हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे राम
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गिरि हरि राधा गिरि हरि राम जय राधा जय जगन्नाथ बलनाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय गौरनिताई जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई जय गौरनिताई जय प्रभुपाद 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 जय जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि नाम संकीर्तन की प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जय मुदीरये श्रीमद्भागवतम् दशम स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 19। आप सब हमारे पीछे दोहराने का प्रयास करें। स्वतोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो स्वतोस्य जन्म स्थिति संयम वदन्त्यनिहात गुणात विक्रयात वदन्ति निहात त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वयीश्वरे त्वदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणे त्वतोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो त्वतोस्य जन्म वदन्त्यनिहाद गुणाद विक्रयात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वयीश्वरे त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणे त्वतोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो त्वतोस्य वदन्त्यनिहाद गुणाद विक्रयात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वयीश्व परे स्वदाश्रयत्वात् उपधर्यते गुणः जन्मास्थिति संयमान विभो
वजन अनिहात अगुणात अविक्रयात
वदन्त्य अनिहात अगुणात अविक्रयात
त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते
त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणः त्वदोस्य जन्म स्थिति संयमान् विभो वदन्ति निहात गुणाद विक्रयात् ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणे स्वदस्य जन्मास्थिति संयमान् विभो वदन्ति गुणाद गुणाद विक्रया ब्रह्मणिनो विरुध्यते स्वदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणः
माता
स्वतोस्य जन्म स्थिति संयमान् विभो वदन्ति गुणात् अगुणात् अविक्रयात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते वदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणे स्वतोस्य जन्म स्थिति संयमान् विभो
ठीक है, अनुवाद एवं तात्पर्य इष्ट भक्त दान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा स्वतः आपसे अस्य संपूर्ण जगत की जन्म सृष्टि स्थिति पालन संयमान तथा संहार विभो हे प्रभु वदन्ति विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं अनिहात प्रयत्न से मुक्त अगुणात प्रकृति के गुणों से अप्रभावित अविक्रयात आपकी दिव्य स्थिति में स्थिर रहने वाले वही आप में ईश्वरे भगवान में ब्रह्मणि परब्रह्म में नो नहीं विरुध्यते विरोध होता है आश्रयत्वात् आपके द्वारा नियंत्रित होने से उपचर्यते अपने आप चलती है गुणे है गुणों के कार्यशील होने से अनुवाद हे प्रभु विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं आप परब्रह्म हैं आप में कोई रोध नहीं है प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण आपके नियंत्रण में है अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती हैं। तात्पर्य वेदों में कथन है न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्मश्चाप्यधिकस्य दृश्यते परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च भगवान को न तो कुछ करना होता है और न कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर ही है क्योंकि सारी घटनाएं उन्हीं की उनकी अनेक शक्तियों के द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटित होती हैं। श्वेतावतार उपनिषद में कहा गया है सृजन पालन तथा संहार इन तीनों का संचालन भगवान स्वयं करते हैं और इसकी पुष्टि भगवत गीता की गई है मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम अंततो गत्वा भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिए वे निर्विकार कहलाते हैं क्योंकि हर घटना उनके निर्देशानुसार होती है अतः वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं इसी तरह वे संहार के स्वामी हैं जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहता है और अनेक उनके नौकर विभिन्न कार्य करते रहते हैं तो वे जो भी काम करते हैं वह अंततः स्वामी का कार्य होता है यद्यपि वह कुछ भी नहीं करता न तस्य कार्य करणं च विद्यते भगवान की शक्तियां असंख्य है अतः सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटित हो रहती हैं भगवान स्थिर है और इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष कर्ता नहीं है श्री प्रभुपाद की आइए मंगलाचरण करते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मिलिन्दं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सदिवमं सार्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवगौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 भूतेर महत पादयिमा पुरो विभो निर्मायक्षेते यद मोक्ष पुरुष भुंगतेर गुणान षोडश षोडशात्मकम् स्वलंकृतिष्टं भगवान् वशांसि मे जयतां सुरतों पंगुं मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजो श्रीराधा मदन मोहन श्रीराधा हरे कृष्णा। इस प्रातःकालीन श्रीमद्भागवत सत्र में पधारे हुए आप सभी वैष्णवों का श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से स्वागत करते हैं। भागवत के बारे में कहा गया है यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का यही धन है भागवत। इसीलिए जो वैष्णव है वो प्राय इसी भागवत में रमे रहते हैं, क्योंकि भगवान के गुण कथाओं को गाना और सुनना यही उनका वास्तविक धन है। इसीलिए जिन वैष्णव पद पर ऊपर उठ चुके हैं वह और किसी भी चीज को महत्व न देते हुए भगवान की कथा और कीर्तन को ही मुख्यतर समझते हुए उसी में रमे रहते हैं, इसलिए इसे वैष्णव का धन कहा गया है। और पूछा गया था भगवान को जब इस तरह धाम से जा रहे थे कि आपके जाने के बाद ये जो है आपके भक्त वो सब किसके आश्रय में किसके सहारे भजन करेंगे, तो कहा कि मेरे जो गुणगान कथा रूपी ये भागवत ग्रंथ है वही सभी का आश्रय होगा। धर्म के बारे में भी पूछा गया था, धर्म की शरणम गतः क शरणम गतः ऋषियों के द्वारा, तब भी बताया गया कि जब भगवान चले गए इस तरह धाम से तब धर्म ने भागवत की शरण ली। तो तो ये श्रीमद् भागवत हम प्रतिदिन सुनते आए हैं और उसे सुनना ही वैष्णव का मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि ये सुनने से ही श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्तों के मुख से भगवान के गुण लीला कथाओं को सुनते सुनते ही भगवान में भक्ति प्राप्त होगी, भगवान के श्री चरणों में भक्ति रति अनुक्रमिष्यति, प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि ये भागवत प्रेम, भगवत प्रेम देने में समर्थ हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रेमो कुमरथो महान, ये प्रेम देने में समर्थ है, इसलिए इसे सुनते सुनते भगवान में प्रेम हुआ। और ऐसे कई उदाहरण हैं, तो आइए हम भी थोड़ा श्रवण करेंगे। यहाँ पर आप सब भक्त सुनते ही आए हैं कि यहाँ जो प्रसंग चल रहा है दशम स्कंद में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और भगवान का जन्म भी दिव्य होता है। गीता के अनुसार भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। अद्भुतम, भगवान का जन्म अद्भुत हुआ। कैसा हुआ? शंख चक्र गदा युधायुधम, पीताम्बर धारण किए हुए थे और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। और अद्भुत, क्योंकि आज तक इस जगत में ऐसा कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ, तो भगवान का जन्म दिव्य है। तो इस प्रकार से जब भगवान का जन्म हुआ चतुर्भुज रूप में, और तुरंत वो एक भगवान अपने बड़े स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म रूप में आ गए, तब वसुदेव जी भगवान को देखकर उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना यहाँ पर चल रही है क्रम से, तो आज के श्लोक में और आगे के श्लोक में भी उन्होंने भगवान के वर्णन किया है कि किस प्रकार आप सृष्टि का सर्जन करते हैं और किस प्रकार महत तत्व आदि तत्वों के द्वारा सृष्टि का सर्जन होता है। इस बात पर आगे के श्लोकों में विचार किया गया है। आज भी ऐसे ही कुछ अंश इस श्लोक में है। तो आज के श्लोक में प्रारंभ में जब वसुदेव जी संबोधन कर रहे हैं, है ना, हम किसी को कुछ प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, बुलाते हैं, तो कुछ संबोधन होता है। भक्तों को देखकर कभी कभी हम किसी भक्त को कहते हैं, आइए महात्मा, साधु इत्यादि, तो उनका अलग अलग अर्थ है। साधु क्यों कहते हैं? उनका जीवन साधु है, या तो कभी प्रभु कहते हैं। तो आज के श्लोक में पहली लाइन में संबोधन शब्द है विभो। वसुदेव जी भगवान को विभो कहते हैं। क्यों विभो कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं विभो का अर्थ है सर्वव्यापक। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु आप सर्वव्यापक, सभी स्थान पर हैं। भगवान इस जगत में व्याप्त हैं और हर जगह पर हैं, इसलिए वो कहते हैं आप व्याप्त हैं, लेकिन अभी आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। हरि वसत सर्वत्र समाना, हरि वसत सर्वत्र समाना। भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि हे सती सुनो, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, परंतु प्रकट कब होते हैं? प्रेमते प्रगट होई मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट होते हैं, है ना? हर स्थान पर हैं। प्रहलाद महाराज भी जब नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो उन्होंने कहा यत्तो यत्तो या मितस्तो नरसिंहा, मुझे तो जहां देखता हूं वहां दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखते हैं नहीं दिखते हैं पता नहीं। क्योंकि भक्त सभी स्थान पर भगवान को देखता है, क्योंकि भगवान है, ऐसा नहीं कि केवल देखता है, भगवान है ही सब स्थान पर, वो सभी जगह पर व्याप्त है, इसलिए उसको विभव कहते हैं। लेकिन प्रकट होते हैं प्रेम से, प्रहलाद के प्रेम से प्रकट हुए, वसुदेव देवी के प्रेम से प्रकट हुए, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, ध्रुव की भक्ति को उनकी प्रेम से प्रकट हुए। वैसे भगवान प्रकट होते हैं प्रेम चाहिए, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन जिन्होंने अपनी आंखों में आंज लिया है वो भगवान को देखते हैं। जो भगवान है सभी स्थान पर व्याप्त है, कहीं ब्रह्म के रूप में, कहीं परमात्मा के रूप में, और कहीं अपने धाम भगवान के रूप में षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण, तो भक्त इन सभी स्थान पर भगवान को देख सकता है। लेकिन कब? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जब आंखों में प्रेम आंज दिया हो, तो ऐसे नयन के द्वारा भगवान को हर स्थान पर देखा जाता है और देखना चाहिए। इस बात को 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र जी महाराज निमु को कहते हैं, जब वो धर्म भागवत धर्म में परीक्षा करते हैं, तो भागवत धर्म के बारे में प्रारंभिक श्लोकों में कहते हुए वो कहते हैं ना कि स्वभाव अनुसृत स्वभाव कायन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मनावान श्रुत स्वभाव करोति यत् यत् सकलं परस्मे नारायणायन समर्पयति। इस प्रकार भागवत धर्म का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि एक भक्त जो भागवत धर्म का आचरण करते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें बहुत कुछ बताया है, अपनी काया मन वाणी बुद्धि के द्वारा और जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के द्वारा जो सेवा कर सकते हैं भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। और कहते हैं कि एक जो भागवत पुरुष होता है, भक्त होता है, तो योगेंद्र जी कहते हैं शरित समुद्रम हरेर शरीरम, ये जगत जो है जहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं या ये मकान है बिल्डिंग है या वृक्ष है, सरित समुद्रम बहुत सारी सरिताएं हैं, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा या समुद्र है, ये जो सृष्टि है भगवान की उसमें भगवान को ही देखता है वो, और देखना चाहिए, देख करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और भक्त को ये होता है क्योंकि भगवान सभी जगह पर व्याप्त है, इसीलिए उनको विभू कहते हैं। तो पहले संबोधन दे रहे हैं कि विभव, और फिर उस नाम के साथ साथ विशेषण दे रहे हैं। विशेषण, विशेषण क्या है? तो कहते हैं वदन्ति निहाद अगुणाद अविक्रयाद। दूसरे लाइन में देखें वदन्ति, तो कहते हैं कौन कहता है? जो विद्वान है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और व्यासदेव जी ने लिखा है कि बड़े बड़े विद्वान इस बात को कहते हैं, विद्वान आदि उनके पिता पराशरी आदि अनेक ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान को ठीक ठीक से जाना है, ये लोग कहते हैं वदन्ति, क्या कहते हैं? अनिहात अगुणात अविक्रयात। इस श्लोक में तीन विशेषण है भगवान के लिए, किसी भी व्यक्ति को विशेषताओं को बताने के लिए विशेषण दिया जाता है और तभी हम उन व्यक्ति को समझ पाते हैं, है ना? किसी की विशेषता जब तक पता नहीं है तब तक उसको समझना मुश्किल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब उनकी कोई पहचान कराता है तो उनकी विशेषताओं को बताता है, तो यहाँ पर भगवान की विशेषता को बताया जा रहा है ताकि हम भगवान को समझ पाए। तो तीन विशेषता है, सबसे पहले अनिहात, संधि विच्छेद करेंगे तो अनिहात अगुणात अविक्रयात, तीन शब्द है। अनिहात का अर्थ होता है चेष्टा रहित, जो कोई चेष्टा जिन्हें नहीं करनी पड़ती है उसे अनिहात कहते हैं। हमें तो हर चीज के लिए मेहनत चेष्टा प्रयत्न करना पड़ता है, है ना? हमारे शरीर को निर्वाह करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और भगवत प्राप्ति करने के लिए भी बहुत चेष्टाएं हैं, इतने आसानी से भगवान नहीं मिल जाते हैं। और इसलिए जो कामी होता है, जो संसार में जगत में मोहित जीव होता है, वह भी सुख के लिए मेहनत करता है, लेकिन भक्त जो होता है, संसार के लोग तो धन के लिए, स्त्री के लिए, घर के लिए, इस प्रकार के भौतिक भोगों के सुखों के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन भक्त जो होता है उनकी चेष्टा भगवान को प्राप्त करने के लिए होती है और होनी चाहिए। तो हम सबको, जितने भी जीवात्मा हैं, उनको किसी न किसी चीज के लिए यत्न या चेष्टा करनी पड़ती है, लेकिन भगवान बहुत कुछ करने के बाद भी चेष्टा रहित है, है ना? वो बस सोए रहते हैं अपने धाम में, लेकिन फिर भी सृष्टि का सर्जन करते हैं, फिर भी क्या करते हैं? तो पहले श्लोक में कहा, जन्म, पहली लाइन में जन्म स्थिति संयमान, वो सृष्टि को जन्म भी देते हैं, उसका पालन भी करते हैं और उसका लय भी करते हैं। क्या करते हुए? बस केवल सोते हुए, वो कोई चेष्टा नहीं करते हैं। भगवान को किसी भी कार्य के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हम देखते हैं उनकी लीलाओं में, है ना? जब कृष्ण चरित्र लीलाओं को आप देखें, सुने, तो पता चलता है कि भगवान ने जन्म लेकर के तुरंत पुतना का, जो 18 किलोमीटर लंबी छोटी पुतना थी, उसको मार दिया। कैसे मारा ये भगवान ने? कुछ है? कुछ करना पड़ा उसको? नहीं, खेल खेल, केवल स्तनपान किया और उसी से वो मर गई, नष्ट हो गई। भगवान को कोई थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ, चेष्टा नहीं करनी पड़ी। और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा, लेकिन बस खेल खेल में समाप्त करते थे, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और उसके आगे फिर उन्होंने गिरिवर धारण किया, हमारे गिरिधारी जी ने, जब गिरिराज को धारण किया तो उसमें भी कोई चेष्टा नहीं। एक बच्चा खेल खेल में बिल्ली के टोप को उठा लेता है, वैसे उस बहुत बड़े इस गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया, तब उनको कोई चेष्टा नहीं हो रही थी, कोई चेष्टा नहीं। और कहां उठाया? इंद्र ने कोप कियो ब्रजयू पर, नक ऊपर गिरिवर धारो। जब इंद्र ने ब्रज पर कोप किया तो भगवान ने अपने नख ऊपर गोवर्धन को धारण किया, कानी उंगली के नख ऊपर गोवर्धन धारण किया। यह भगवान की विशेषता, उनको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। तो जन्म स्थिति संयमान विभो, वो सृष्टि को जन्म भी देते हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं। यहां हमको अपने घर का पालन करने में कितनी चेष्टा करनी पड़ती है, न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता एक परिवार को संभालने के लिए, लेकिन भगवान पूरे जगत का भरण पालन कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। और जन्म भी देते हैं, स्थिति पालन भी करते थे, और संयमान वो संहार भी कर देते हैं इस जगत का समय समय पर, लेकिन उनको कोई चेष्टा नहीं, वो बस सोए रहते अपने स्थान पर। फिर आगे कहते हैं, दूसरा जो है अगुणात्, भगवान को गुणों से रहित कहा गया है। अगुणात् माने जिनमें कोई गुण नहीं है, ऐसा अर्थ होता है। तो हमें क्या लगता है यहां पर अगुणात् क्यों कहा गया है? अगुणात् का अर्थ होता है जिनमें गुण नहीं है, है ना, निर्गुण। तो हम तो सुनते हैं कि उन्हीं के गुणों के कारण तो सब कुछ टिका हुआ है, और हम भी उनके गुणों को सुनकर, बोलकर, कीर्तन करके ही जा सकते हैं, यदि वो भगवान अगुण है तो फिर प्रश्न होता है ना। तो बार बार तो कहा जा रहा है भागवत में कि भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए, भगवान के गुणों को गाइए, और भक्तों ने भी बार बार प्रार्थना की है, आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए भक्तों को। वत्रासुर जी ने कहा है, अहम हरेर तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितात्म भूय मनः स्मरेताम सुपतेर गुणास्ते। मेरा मन आपके गुणों को स्मरण करता रहे, तो यदि भगवान अगुण है तो फिर किसके गुणों का स्मरण किया जाए। और इसी दसम स्कंद में आगे चलकर नौवें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला आएगी, और दामोदर लीला में उन्होंने यमला अर्जुन को उद्धार किया, हम सब जानते हैं, इस लीला से परिचित हैं। तो वहां पर जब यमला अर्जुन का उद्धार हुआ, उसके बाद यमला अर्जुन भगवान से स्तुति करते हैं, वहां भी कहते हैं, वहां तो श्लोक के प्रारंभ में कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम अस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। कहते हैं वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु मेरी वाणी आपके गुणगान में रगे। गुणानुकथन है, गुणों को कहने में, बोलने में, कीर्तन करने में लगे। तो यदि भगवान अगुण है, यहां पर वसुदेव जी कहते हैं अगुणात, आप अगुणात और विशेषता दे रहे हैं, तो अगुणात क्यों कह रहे हैं? तो इसका अर्थ देते हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रजव और तमह, ए गुण से भगवान रहित है, इसीलिए उसको अगुण कहते हैं। यद्यपि इनमें बहुत सारे गुण हैं, गुणों भंडार हैं, लेकिन जीवात्मा की सृष्टि के लिए भगवान ने जो प्रकृति बनाई और उस प्रकृति के गुणों से सभी जीव का, सभी सृष्टि चल रही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा, है ना। सतोगुण से पालन होता है, रजोगुण से सृष्टि होती है, और तमोगुण से इस सृष्टि का नाश होता है। तो ये तीनों गुण से ये सारी प्रकृति जो है, सभी जीवात्मा है, उनके शरीर है, ये जो भी जगत है, इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये गुण जीव पर हेवी है, लेकिन भगवान वो गुणों से रहित है। ये जो तत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, जब जीव इस प्रकृति में आता है तो उनको किसी न किसी एक गुण के अंतर्गत रहना होता है। तीनों गुणों में अंदर किसी, कोई ना कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, लेकिन भगवान जो है वो इन गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, क्योंकि वो अगुण है। नहीं तो गुण तो उनके बहुत है, गुण तो बहुत हैं, जैसे, और गुण इतने मधुर हैं भगवान के कि इन गुणों के कारण बड़े बड़े योगी भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। यद्यपि हम सुनते हैं समाज में या कि भगवान निर्गुण हैं, और कुछ लोग निराकार निर्विशेष का ध्यान करते हैं, तो यद्यपि वो गलत नहीं है, जो निर्गुण शब्द है वो गलत नहीं है, भगवान गुणों से रहित है, लेकिन प्रकृति के गुणों से रहित है, वैसे तो उनमें बहुत गुण है। तो ये ज्ञान सत्य है, लेकिन अधूरा ज्ञान है कि वो निर्विशेष है, वो सविशेष है, निर्विशेष भी है और सविशेष भी है। और वास्तव में जो भक्त होते हैं, और खास करके जो सभी लोगों की बात है, कि भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, और इसलिए कई जगह पर प्रश्न उठाया गया है कि भगवान निर्विशेष भी है, निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो जिनको भगवान को प्राप्त करना है उनको किस स्वरूप का भजन करना चाहिए? गीता के 12वें अध्याय में प्रथम श्लोक में अर्जुन के द्वारा प्रश्न उठाया गया कि इनमें से कौन से स्वरूप का भजन करने से, या भगवान को पूछा गया है आप किसको उत्तम मानते हो, तो भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया, मैया वेश्य मन ये मत, मैया वेश्य मन ये, फिर आगे कहते हैं कि नित्य युक्ता उपासते, मेरे सगुण स्वरूप, मेरे गुणों रहित जो गुणों वाला स्वरूप है उसका नित्य युक्त उपासते, उसमें अपने मन को लगाकर नित्य मेरी सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं कि स युक्त तमो मत, यही मेरा मत है कि यही उत्तम है जो सगुण रूप का भजन कर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी बताया गया है, जो प्रारंभ में वो भगवान के निर्गुण स्वरूप ब्रह्म में अपना ध्यान लगाकर उसी में रमण करते थे, मस्त थे, लेकिन उस ब्रह्म योगी सुखदेव जैसे, सुखदेव महाराज जैसे योगी को भी भगवान के गुणों ने खींच लिया है ना। वो स्वयं अपने मुख से कहते हैं भागवत के द्वितीय स्कंद में परीक्षित को, जब परीक्षित ने कथा के बारे में पृच्छा की तब सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपने मुख से कहते हैं परीक्षित तुमने जो ये कथा के बारे में पृच्छा की है, आत्म प्रसिद्ध ये आत्मा को प्रसन्न करने वाली है, जगत का कल्याण करने वाली है, क्योंकि इन भगवान के गुण रूप नाम की जो कथा है, मैं यद्यपि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं अपने जन्म से ही तुरंत जन्म होते ही मैं जंगल में भाग गया और निर्विशेष निर्गुण भगवान ब्रह्म का मैंने ध्यान लगाया और उसी को अपने हृदय में धारण करते हुए मैं उस ब्रह्म ज्योति के आनंद को प्राप्त किया। लेकिन जब भगवान के गुणों को मैंने कान से सुना तो मेरे चित्त को उस भगवान के गुणों ने खींच लिया, है ना। प्रसंग याद है आपको, सुखदेव गोस्वामी जन्म होते ही अपने घर से निकल दिए, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अभी तो जन्म का संस्कार भी नहीं किया था, उपनयन संस्कार यदि बहुत सारे संस्कार भी हैं, और संस्कार नहीं हुआ था उसके पहले तो सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि भगवान की माया से उनको डर था। यद्यपि गर्भ में भगवान ने वचन दिया था लेकिन एक भक्त को चाहिए कि वो इतना सावधान रहे माया से, क्योंकि माया कब पकड़ लेती है पता भी नहीं चलता है। इसलिए भक्त जो होता है वो सावधान रहता है हर समय। तो सुखदेव गोस्वामी जब भाग गए, अब वेदव्यास ऋषि जो है वेदव्यास देव, उन्होंने क्या सोचकर संतान उत्पत्ति की थी और भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे संतान दीजिए, क्योंकि उन्होंने इस भागवत ग्रंथ को जब लिखा, लिखने के बाद जगत के कल्याण के लिए लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि अब इनके योग्य व्यक्ति कौन है जिसे मैं दूं ताकि वो और लोगों को सुनाए। तब उन्होंने भगवान को ही प्रार्थना की, अब मुझे ऐसा एक पुत्र दीजिए जिसे मैं भागवत दे सकूं और वो जगत को दे सकूं। तब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, लेकिन अब वेदव्यास जी तो उसके भागवत सुनाना चाहते हैं लेकिन वो तो भाग गए, अब क्या करें। तब कातर उसके विरह में कातर वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे भागे है? लेकिन वो हाथ में नहीं आए, फिर लौट गए, फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तब उनको भी याद आया कि नहीं, भगवान के गुण रूप लीला का जो कीर्तन है उन गुणों की कीर्तन से वो निश्चित प्रभावित होगा, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ा करके भेजा कि आप जाओ जंगल में और इन श्लोकों का उच्चारण करो। तो उनमें से एक श्लोक है, कौन सा है इसको याद है, है? एक बरहा पीड़म वो तो है, दूसरा है अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजे। कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जिनमें ऐसा गुण हो। भगवान में एक गुण उन्होंने बताया उस श्लोक में, क्या है वो? वो है करुणा का गुण। करुणा का गुण जो भगवान ने, सर्वश्रेष्ठ गुण है करुणा का गुण। कैसी करुणा? तो उसमें सुनाया गया कि भगवान इतने करुणामय है कि पुतना जैसी राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन उस मारने वाली इस पुतना को भी करुणा करके अपनी माता की गति, धात्री की गति अपने धाम में प्रदान कर दी। ये है गुण। ऐसी करुणा किस में हो सकती? तो ये करुणा का गुण जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना कि वो, तब वो उनका चित्त निर्विशेष सगुण भगवान में, भगवान के गुणों में मत हो गया। और दूसरा बरहा पीडम नटवर वपु करणीयो करणिकारम, भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ। जब प्रथम बार भगवान रज में गाय चराने के लिए निकलते हैं तब उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन हुआ। तो इन दो श्लोकों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी जैसे योगी का भी चित्त भगवान के गुणों में लग गया। तो ये है भगवान के गुण। तो मैं कह रहा था गुण तो बहुत हैं, लेकिन यहां पर अगुण कहा गया। अगुण का अर्थ है कि उनमें जो प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं उसके वो प्रभाव में नहीं आते हैं, इसलिए प्रभुपाद शब्द देते हैं अप्रभावित। फिर तीसरी विशेषता दे रहे हैं अविक्रयात, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यद्यपि विकार के बिना सृष्टि नहीं होती है इस भौतिक जगत में, विकार के बिना, विकार का होता है संयोग, या कोई विकार उत्पन्न होता है तब सृष्टि होती है। जब सतो तमोगुण रजोगुण रूपी विकार किसी के मन में प्रकट होता है तब कुछ सर्जन होता है, लेकिन भगवान सभी विकारों से रहित हैं। और दूसरा जैसे काम है ना, काम जैसे काम विकार उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति होती है, और क्रोध विकार यदि उत्पन्न होता है तब संहार होता है। क्रोध के बिना संहार नहीं हो सकता और काम के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन भगवान स्थिति को जन्म भी देते हैं, उनको पालन भी करते हैं। और पालन कब होता है पता है? जब आसक्ति होती है ना। आज हम परिवार को पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारी ममता है, मोह है। तो ये जो काम क्रोध मोह लोभ ये सब जो विकार हैं, भगवान सृष्टि का सर्जन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, फिर भी उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, इसलिए भगवान को अविक्रय कहा गया है। तो भगवान अविक्रयात। फिर प्रश्न होता है कि भगवान अनिहात, अगुणात, अविक्रयात हैं, और फिर तीसरी लाइन में कहते हैं न विरुध्यते। तो कहते हैं त्वय ईश्वरे ब्रह्मणि एन विरुध्यते। त्वय आप ईश्वर और ब्रह्म है, आप ईश्वर भी है ब्रह्म भी है, उसमें कोई विरोध नहीं है। यद्यपि विरोध है क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म ये शब्द परस्पर विरोधी शब्द है। ब्रह्म जो है उसका कार्य क्या है पता है? हम जैसे ब्रह्म और परमात्मा है ना, ब्रह्म जो है वो सभी जगह पर व्याप्त है, सभी स्थानों में है, लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। यहां तक कि परमात्मा भी हृदय में है, लेकिन उसको साक्षी पुरुष कहा जाता है। वो कभी आपको, आप यदि गलत काम करते हो तो कहेंगे नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, नहीं कहेंगे, क्योंकि वो साक्षी हैं। लेकिन ईश्वर, ईश्वर तो कंट्रोलर हैं, है ना। हम यदि गलत करते हैं तो हमारे जो भी कंट्रोलर है, गुरु है या देवता है, वो तुरंत दंड देते हैं। भगवान भी दंड देते हैं कभी कभी कर्मों का। तो ईश्वर होता है वो कुछ करता है या दंड देता है, लेकिन ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं करता है। वो तो बस ऐसे स्थित सभी स्थान पर व्याप्त है। तो ये दोनों परस्पर हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मिट्टी, मिट्टी में से घट बनता है ना, घड़ा। तो मिट्टी जो है वो ब्रह्म है, और उस घड़े को बनाने वाला जो निमित्त बनता है, कुम्हार, कुम्हार जो होता है वो मिट्टी में से घड़ा बनाता है। तो मिट्टी कभी कुम्हार नहीं बन सकती, या कुम्हार और मिट्टी दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों एक कभी नहीं हो सकते, है ना। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक नहीं हो सकते। उपादान कारण मिट्टी है, इससे घट बन सकता है, लेकिन वो मिट्टी ही अपने आप से घड़ा नहीं बना सकती। वो जो कुम्हार है बनाने वाला, वो बनाता है। लेकिन यहां भगवान को दोनों कहा गया, आप ईश्वर भी हैं ब्रह्म भी हैं। तब तो परस्पर विरोधी शब्द हैं कि दोनों एक चीज हो सकते इस जगत में है? लेकिन भगवान जो है यहां पर वसुदेव जी कहते हैं न विरुध्यते, आप दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप भगवान, आप सृष्टि का उपादान कारण भी है और सृष्टि का निय, सृष्टि का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी है। आपके माध्यम से सृष्टि बनती है। अब तीसरी लाइन, लास्ट लाइन में कहते हैं त्वदाश्रयत्वाद उपचर्यते गुण है। और तीसरी लाइन में फिर ये कहा गया है कि त्वदाश्रयत्वाद उपचर्यते गुण है। आप सृष्टि का सर्जन पालन करते ऐसा गया है, लेकिन वास्तव में आप सृष्टि का सर्जन पालन और संहार नहीं करते है? और फिर भी आरोप आप पर आता है कि आप ही कर रहे हैं, लेकिन आप किसके द्वारा करते हैं? तो अंतिम शब्द गुणे हैं। ये सृष्टि का सर्जन पालन और लय, ये जो है ये प्रकृति के गुण ही करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कौन करता है? भगवान करता है, जैसे आगे कहा गया। क्यों ऐसा है? तब उदाहरण देते हैं कि जैसे एक राजा होता है और उनकी सेना जो होती है वो कहीं युद्ध करके जीत कर आ जाती है, तो विजय किसका माना जाता है? उस राजा का। वैसे ही ये प्रकृति, भगवान कहे मया अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्ष में है, यह कहा तद आश्रय, भगवान के आश्रय से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसलिए जब कहने को होता है तब यही कहा जाता है कि भगवान करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो है, जो प्रकृति है, वो भगवान के आश्रय में है। ये जो तीन गुण माया से, माया में जो त्रिगुण, तीन गुण जो माया के हैं, ये माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। तो उस पर भी आचार्य ने कहा है कि वास्तव में माया के साथ भगवान का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो माया भगवान की कही जाती है। यद्यपि भगवान की जो शक्ति है अंतरंगा शक्ति, उसी का प्रतिबिंब है माया शक्ति, उसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य की अंतरंग शक्ति है उनका प्रकाश, और वही सत्य है। लेकिन उस सूर्य के प्रकाश के कारण इस जगत में हम देखते हैं कि साया भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। साया है ना, किसी वृक्ष के नीचे हम खड़े रहते हैं तो नीचे साया दिखाई देती। तो यद्यपि सूर्य के साथ उनका संबंध कोई नहीं है, आपस में, लेकिन फिर भी वो सूर्य के कारण है। यदि सूर्य न रहे तो साया का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे भगवान की प्रकाश अंतरंगा शक्ति के कारण ही माया शक्ति का प्रभाव है, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वैसे भगवान अपने इशारे से इस प्रकृति को उत्पन्न करते हैं, केवल इच्छा मात्र से, उनको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, और वो अगुणत होते हुए भी इस संसार इस प्रकृति में गुण देते हैं, और उसी गुणों से सृष्टि का सर्जन होता है, पालन होता है और लय होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आश्रय में है, इसीलिए इसका आरोप जो है वो भगवान पर आता है कि आप करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर वसुदेव जी भगवान के बारे में विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि आप तो नित्य अपने धाम में विश्राम करते हैं, भगवान शयन संया पर, संया सागर ऊपर विश्राम करते हैं नाग की संया पर, लेकिन अपने संकल्प मात्र से सारी सृष्टि सारा जगत चलता है, जन्म होता है लय हो जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसे भगवान प्रभु आप हमारे यहाँ पधारे हैं, निधन्य हो गया। इस प्रकार से इति भाव भाव है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि किसी भी वस्तु के किसी जगत के भगवान प्रत्यक्ष करता नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो ऐसे भगवान का हमें भजन करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? जिज्ञासा? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की है, शिल्प उपाद की निदाय गौर है।